हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 10 और 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतं अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणं कृतस्त्वा। स्मरतव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विद्धि निषेदास्यो एतयोरेव किंकर। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति येस्तवे वेदिसांगपद क्रमोपनिषदे। गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। दिवाय तमे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं ग्रेष्वं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। परीक्षित महाराज, बेल रूपी धर्म और पृथ्वी रूप गौ रूपी पृथ्वी को सांत्वना देते हुए अत्यंत ही सुंदर शब्द बोल रहे हैं। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते सात्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर् आयु भगो गति ईशराख्यं परो धर्मो यातानामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम् यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ति सात्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर् आयुर्भगो गति एष राख्यं परो धर्मो यार्तानामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। शब्दात् यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा। यस्य महाराज परीक्षित गौ और बैल को संबोधित करते हुए कहते हैं वो राजा जिसके राष्ट्रे जिसके राज्य में प्रजा सर्वा सारी जो प्रजा है वो त्रस्यन्ते। त्रस्यन्ते का मतलब होता है कि वो भयभीत रहती है और प्रजा को बहुत कष्ट रहता है। यदि कोई राजा की प्रजा को कष्ट हो रहा है या भयभीत हो रहा है साध्वी साधु भी हे साध्वी ये गौ माता को कह रहे हैं असाधु भी यानी दुष्टों के द्वारा। यदि कोई जो दुष्ट हैं जो असाधु हैं उनके द्वारा अगर दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है और उस राज्य का जो राजा होता है तस्य मत्तस्य नश्यन्ति मतलब तस्य मत्तस्य यानी मोहग्रस्त का वो तो मत्त है वो तो मोहग्रस्त है वो राजा बना है उसका कर्तव्य है कि वो देखे कि मेरी प्रजा कितनी सुखी है कितना कुशल से है कहीं कोई उसे कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है कोई उनको तंग तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी राजा के होते हुए उसकी प्रजा जो है वो त्रस्यन्ते अगर वो दुखी है तो फिर वो मोहग्रस्त है और निश्चित रूप से क्या होने वाला है नश्यन्ति विनाश होने वाला है। किस चीज का कीर्तिर आयु भगो गति। कीर्ति कहते हैं उसकी कीर्ति यानी यश वो राजा बनने का यश तभी प्राप्त करने का अधिकारी है जब उसकी सारी प्रजा खुश है आनंद से। लेकिन यदि उसकी प्रजा को कष्ट मिल रहा है तो उसका संपूर्ण यश सर्वनाश हो जाएगा। नश्यन्ति कीर्ति उसके साथ साथ आयु मतलब उसकी आयु भी क्षीण हो जाएगी और भग भग मना संपत्ति, जो उसके पास जो कुछ उसने आज तक कमाया है, धन वैभव वो सब, और सबसे बड़ी बात गति, कीर्तिर आयुर भगो गति। गति का मतलब होता है जो उसका आगे पुनर्जन्म होने वाला है। मतलब यहाँ तो वो संसार में अपने आप को बड़ा राजा कहला रहा है, लेकिन राजा कहलाने के बावजूद भी यदि उसके प्रजा को कष्ट मिल रहा है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस संसार में रहते हुए उसकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी, आयु समाप्त हो जाएगी, संपत्ति लुट जाएगी, और साथ साथ में उसका दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा। गति उसकी मतलब उसकी गति भी नहीं होगी, उसको परम गति भी प्राप्त नहीं होगी अगर वो अपनी प्रजा को आनंदित नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर देखना चाहिए आजकल के राजाओं को, शास्त्र के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। भले ही शास्त्र में जो भी लिखा हो, हम तो वही करेंगे जो हमें हमारी इंद्रियों को आनंद पहुंचा रहा है। पहले के राजा जो होते थे वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते थे, सारे जो शास्त्रों में रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते उन्हीं के अनुसार ही कार्य करते थे। इसलिए प्रजा भी शास्त्रों के अनुसार कार्य करती थी। लेकिन आजकल के राजाओं को खुद ही शास्त्र पता नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, और फिर आगे उनका भी और उनकी प्रजा का भी संसार में कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु समाप्त हो जाती है, उनको उनका जो संपत्ति है भग वो भी समाप्त हो जाता है, और साथ साथ में उनकी आगे जो उनकी गति है वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं एष राज्ञाम परो धर्मो, एष राज्ञाम, ये है राजा का परो धर्म। राजा का परम कर्तव्य क्या है? ह्यार्ता नाम आरती निग्रह, जो ह्यार्त हैं मतलब जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, कष्ट भोगने वाले हैं, तो उनका क्या करे? आरती निग्रह, उनके दुखों को कम करे, वो कष्ट भोगने वालों के दुखों को दूर करे। ये क्या है? एष राज्ञाम परो धर्मो, ये राजा का परो धर्म है। अत एनम वदिष्यामि भूत द्रोहम असत्तमम, अत एनम वदिष्यामि, इसलिए जब तक मैं राजा हूं तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अत एनम, ये जो दुष्ट है ना तुम लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है ना, वदिष्यामि, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। और ये बहुत ही दुष्ट है, भूत द्रोहम, ये जीवों की हत्या करने वाला है, जीवों की हिंसा करने वाला है, ये सबको तकलीफ पहुंचाने वाला, कष्ट देने वाला है। असत्तमम, और अत्यंत दुष्ट है, तो मैं अत एनम वदिष्यामि, मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम मेरे राज्य में रह रहे हो, मेरी प्रजा हो, तो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा और मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म पर लोग भी नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत ही दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों को का हिंसक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से एक राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहते हैं कि जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्रवाई करते हैं। इसी तरह सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों, हत्यारों को तुरंत ही मार डालें, है ना। जिस तरह से अगर जंगली पशु जो है वो दूसरों को तंग करते हैं तो जो राजा होता है, गवर्नमेंट होती है, तो क्या करते हैं, उन जंगली जो पशु होते हैं, शेर चीता, अगर किसी को मारने वाले होते हैं, अक्सर मारते हैं, तो फिर उनको मारने की कार्रवाई करती है। उसी तरह से ये भी तो है ना, सरकार का ही, गवर्नमेंट का ही कर्तव्य है कि इस संसार में जितने भी चोर हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं, उनको तुरंत मार दे। तो वही दंड पशु वधकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है ना? दूसरों मनुष्यों को मारने वाले को जब प्राण दंड मिलता है तो पशु भी तो उसी राजा की प्रजा है ना, तो उनको मारने वाला कैसे बचकर जी सकता है? वो भी तो, वो पशु भी तो उसी राज्य के अंदर रहता है, तो वो भी उस राज्य की प्रजा है, तो जो पशुओं का वध करता है उसे भी प्राण दंड मिलना चाहिए। और क्योंकि पशु भी राजा की प्रजा है, प्रजा का अर्थ जिसने राज्य में जन्म लिया हो, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों ही सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। अगर आप राजा बने हो, कोई भी अगर राजा बना है तो उसका मूल कर्तव्य क्या है कि उसके राज्य में चाहे कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य हो, सबको संरक्षण तो प्रदान होना चाहिए। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतएव उन्हें भी रहने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है ना? जंगल के जो पशु होते हैं वो भी राजा के प्रजा हैं, उनको भी संरक्षण प्रदान करना, उनके भी है ना व्यवस्था करना हर एक वस्तु की, तो राजा का कर्तव्य है। फिर जो ये घरेलू पशु हैं, गाय है, बैल है, जो घरों में रहने वाले, उनके विषय में क्या कहा जाए? उनको तो संरक्षण प्रदान होना चाहिए। वो गाय और बैल तो इतने पवित्र जानवर हैं, इनको तो बल्कि शास्त्रों में पशु ही नहीं कहा गया। शास्त्र तो गाय को माता का दर्जा देता है, गाय जो है वो शास्त्र में माता के समान मानी जाती है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और बैल जो है वो क्योंकि उसके द्वारा जो है हल चलाकर अनाज उत्पन्न किया जाता है, तो फिर बैल जो है वो पिता का स्वरूप है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत ही दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ही उसे उत्पाती का वध कर दे ना? जो दूसरे लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, कष्ट पहुंचाता है, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि ऐसे उत्पाती को तुरंत ही उसे दंड देना चाहिए, वध करने ना केवल दंड देना चाहिए बल्कि वध कर देना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए, जो गाय और पशुओं जैसे गाय और बैल जैसे पशुओं के ऊपर प्रहार करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता है, त्रस्त करता है, उसे तुरंत ही दंड दिया जाना चाहिए, है ना? जैसे मनुष्य को मारने वाले को दंड दिया जाता है, उत्पात मचाने वाले को दंड दिया जाता है, उसी तरह से जो पशुओं का वध करता है, उन्हें त्रस्त करता है, उन्हें भी तुरंत ही दंड देना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, ईश्वर विधान के अनुसार सारे जीव, चाहे वे जिस भी स्वरूप में हो, भगवान के पुत्र हैं, और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वर विधि संहिता उसकी आज्ञा ना दे। भगवान ने कहा है, पिता हमस्य जगत हो, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं खाली मनुष्यों का पिता हूँ, मैं खाली ब्राह्मणों का पिता हूँ, मैं खाली भक्तों का पिता हूँ। भगवान ने कहा, जगतो, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको यह अधिकार हो कि वो अन्य पशुओं को केवल अपनी जीवा की तुष्टि के लिए मारे, केवल अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की संतान को मारने वाले को क्या बख्श दिया जाएगा? तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते, ईश्वर संहिता उसकी आज्ञा ना दे। मतलब सारा जीवस्य जीव भोजनम, सारे जो जीव हैं उनका भोजन जो है एक न एक जीव होगा। हम कोई कंकर पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा खाकर तो जिएंगे नहीं, जरूर कोई जीवित वस्तु जो होगी उसी के द्वारा ही हम अपना भरण पोषण करेंगे। लेकिन शास्त्र को देखना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है मनुष्य के खाने के लिए। जैसे श्री प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि शेर अपने अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को नहीं मार सकता। ये उस ईश्वर का विधान है जिसने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे पशु को खाकर जीता है। इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे हम खाते हैं फल हैं, सब्जियां हैं, तो वृक्ष में भी प्राण होते हैं। लेकिन अतएव नियम यह है कि ईश्वरी विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीव को जीवित रहना चाहिए। जो शास्त्र में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसी के अनुसार आप अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ खाओगे, जो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार जो कुछ खाओगे तो उसके लिए आपको दंडित होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अतएव नियम यह है कि ईश्वर विधि विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीव को जीवित रहना चाहिए। ईशोपनिषद में क्या बताया गया है, निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के आदेश अनुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। यदि ये करना आ जाए ना मनुष्य को तो फिर सारा झंझट समाप्त हो जाता है। इसी जन्म में जीते जी मुक्ति मिल जाती है अगर वो भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते। मगर समस्या ये है कि आज का मनुष्य जो है वो शास्त्र के आदेशों को पढ़ता नहीं है, शास्त्र के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार जो उसको इच्छा होती है बस उसी के अनुसार खाता है, उसी के अनुसार जीता है। इसीलिए उसे बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त तरह तरह के अन्नों फलों तथा दुग्ध से जीवन यापन कर सकता है और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु को खाने की आवश्यकता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकृति में इतना कुछ है खाने के लिए कि सारे जितने भी मनुष्य हैं वो आसानी से दूध फल अन्न सब्जियां इत्यादि खाकर आनंद से रह सकते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसे दूसरे पशुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहे जाने वाला मोहग्रस्त राजा भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति ये जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसे मूर्ख राजा या प्रशासक नरक में जाते हैं। प्रशासक को अपनी प्रजा की जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों ही आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करके रहना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि राजा, क्योंकि राजा सारी जो प्रजा होती है वो राजा की ही प्रजा होती है, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि सारे जीवों को संरक्षण प्रदान करे। परंतु कुछ आजकल के जो राजा हैं उन्हें शास्त्र के विधि विधानों का पता नहीं है, वो मोहग्रस्त हो गए हैं और वे क्या करते हैं अपने ही राज्य में कसाईघर खोलने की अनुमति देते हैं। हालांकि राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा की संरक्षण प्रदान करना, परंतु वो क्या करते हैं अपनी प्रजा को कसाईघरों में मरवा देते हैं यह जाने बिना कि जब इन पशुओं का वध किया जाएगा, जब इनको मारने की जब अनुमति दी जाएगी और उस समय जब वो बहुत ज्यादा पीड़ा में आएंगे तो पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक में जाता है। जब आपकी प्रजा संतुष्ट नहीं है तो आपको आपकी गति, जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायो भगो गति। अगर राजा है और उसकी प्रजा दुखी है तो फिर उसका जो राजा है उसकी सारी कीर्ति, उसका सारा वैभव और उसका सारा आयु और ये सब नष्ट हो जाते हैं। और आज अभी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ऐसा राजा होता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, जो अपने प्रजा को संरक्षण प्रदान नहीं करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो पूछताछ करता रहे कि मेरी प्रजा का क्या हाल है। जैसे श्री राम के विषय में हम जानते हैं कि वो रात रात तक अपने गुप्तचरों को भेजता था और देखता था कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। तो राजाओं को ये अवश्य जानना चाहिए कि उसकी प्रजा दुखी है या
सुखी है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा है तो उसका पूरा दंड जो है वो राजा को भोगना पड़ेगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को कष्ट से बचाए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित ने किया। जो दूसरों को कष्ट दे रहा है उसको फौरन से पकड़ के उसको मार डालना चाहिए। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। आजकल जो ये जगह जगह पर कसाई घर खुले हुए हैं और निर्दोष पशुओं को खुले आम जो बगैर इतना बेदर्दी के साथ बगैर किसी व्यवधान के बगैर किसी रुकावट के मारा जाता है, तो शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। कैसे नहीं मिलेगी? जब हम उसका सेवन नहीं करेंगे। यदि कोई पशुओं का जो मांस है उसको खाता है तो उसे पुनर्जन्म में पुनः वही पशु बनकर आना पड़ता है और वही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसीलिए जो राजा है ये उसका कर्तव्य है कि पशुओं के वध की उसके जो उसका देश है उसमें बिल्कुल भी आज्ञा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सबका विनाश हो जाएगा। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। और महाराजा परीक्षित यहाँ उद्धरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति आयु बल तथा अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को भी खतरे में डाल देता है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्बलो नश्यन्ति कीर्तिर आयुर भंगो गति। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी भी इसी के विषय में बता रहे हैं कि जो लापरवाह राजा होते हैं, जो अपनी प्रजा की परवाह नहीं करते हैं, वो देखते नहीं है कि मेरी प्रजा को कष्ट मिल रहा है, तो ऐसे प्रशासक की ख्याति आयु बल तथा अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का अवसर खतरे में डाल देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। भले उनको विश्वास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यदि मानते नहीं है तो दूसरा जन्म नहीं है। दूसरा जन्म है, तभी तो इस जन्म में हम लोगों को किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को लाभ प्राप्त होता है, किसी को हानि प्राप्त होती है, किसी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और किसी को बगैर मेहनत के सब प्राप्त होता है। तो क्या भगवान देने वाला अन्याय करता है? भगवान अन्याय नहीं कर रहा है, भगवान सबको उनके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ देते हैं। तो यहाँ संसार में जो मूर्ख लोग हैं वही शास्त्र के इस विधान को नहीं मानते हैं और वही अपने जीवन के सिर्फ थोड़े से भोग के लिए सारे पशुओं का हत्या करते हैं, उनको इतना कष्ट पहुंचाते हैं, तो उन्हें अवश्य ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई है और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है कि जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त ईश्वर संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक राजा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, परंतु वो भगवान के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। ये उनकी उसकी अंतिम इच्छा जो है वो अपने अंतिम इच्छा को बता के गया था और जो सिर्फ उसका अज्ञान प्रकट होता है कि भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं है। यह राजनेता ईश्वरी संहिता के इतना अनभिज्ञ था कि उसने क्या लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और उनको मान लेना तो एक प्रकार का छलावा है। अपने आप को तथा अन्यों को धोखा देना होगा, इस विषय में मेरी धार्मिक भावना नहीं है। तो यहाँ पर उसने साफ साफ लिखा है कि मैं तो ऐसे अनुष्ठानों पर विश्वास ही नहीं करता, भगवान में और भगवान की सत्ता में मुझे कोई विश्वास नहीं है और उनको मान लेना तो एक प्रकार का छलावा है। बस ऐसे ही अपने आप को छलावा देने के लिए उसको मान रहा हूँ और अपने आप को तथा अन्यों को धोखा देना होगा कि अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान की सेवा ऐसे, तो समझो ये छलावा है और इसके द्वारा हम खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं, इस विषय में मेरी धार्मिक भावना नहीं है कि मैं धार्मिक भावना से मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ, मगर है ना मुझे पता है कि ऐसा कोई जो ये अनुष्ठान है उसमें मुझे ये भगवान में इत्यादि में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए इन बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि अगर यस्य राष्ट्रीय प्रजा सर्वा त्रस्यन्ति साधु साधु, अगर किसी राजा की प्रजा जो है वो कष्ट में है, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भवेत, तो फिर मेरा मत है कि उसकी कीर्ति, उसकी आयु, उसका जो गति है, उसका जो भाग है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं इन दो राजाओं को। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम आधुनिक युग के महान राजनेताओं के के इस वक्तव्य एवं महाराजा परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर प्राप्त होता है। आजकल के राजा में और परीक्षित महाराज में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। तो क्या अंतर है? श्री प्रभुपाद जी कहते महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। पहले जो राजा थे वो कैसे चलते थे? शास्त्रीय संहिता, जो भी शास्त्र में आदेश दिया गया है उसी के अनुसार धर्म करते थे। लेकिन आज के राजा क्या करते हैं? अपने निजी विश्वास की भावना पर, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम समझते हैं कि ये सही है, अपनी बुद्धि से जो निर्णय लेता है उसी में करता है, मगर शास्त्र को अध्ययन नहीं करता, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता। वास्तव में शास्त्र हमें बताता कि आपके पास जो बुद्धि है ना, उससे आप तीन काम कर सकते हो, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सोच सकते हो, बस। बाकी जो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करनी है उसके लिए आपको आध्यात्मिक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो राजा होते हैं उन्हें इन शास्त्रों पे ना तो विश्वास है, ना वो फॉलो करते हैं, मगर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीव है, उसके हाथ पैर प्रकृति की रस्सी से बंधे हुए हैं, फिर भी वह अपने मन माने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है। वो किसी के ऊपर भी स्वतंत्र नहीं है, वो बद्ध जीव है, लेकिन फिर भी अपने मन माने विचारों के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र मानता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। यदि वो स्वतंत्र होता तो वो अपने शरीर की रक्षा कर सकता, यदि वो स्वतंत्र होता तो अपने आप पर कभी किसी बीमारी को अटैक होने नहीं देता। अगर वो स्वतंत्र होता तो फिर अपनी इच्छा से मृत्यु को रोक सकता था, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो बद्ध जीव है, इसीलिए उसके हाथ पैर सब प्रकृति की रस्सी से बंधे हुए हैं, फिर भी वह अपने मन माने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है, खुद को स्वतंत्र मानता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराजा परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं की को समुचित संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता है, ना ईश्वर के नियम से अनभिज्ञ का होता है। मूर्ख श्रद्धाहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का यत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते रहते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति आज भी यदि जीवों को खुश रहना है, आनंद से रहना है, तो उसका एक ही तरीका है कि राजा जो है वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करे, वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करे, तभी जो प्रजा है वो संतुष्ट हो सकती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराजा परीक्षित के काल में लोग सुखी थे, क्योंकि पशुओं को समुचित संरक्षण प्रदान था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वर के नियम से अनभिज्ञ होता था, वो मनमानी भी नहीं करता था कि अपनी मर्जी से कर लेता, और ना ही कोई ऐसे पहले राजा होते थे जो कि शास्त्रों को नहीं जानते। भगवान ने बताया भगवद गीता में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम, मैंने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? विवस्वान को दिया। क्यों? क्योंकि वो राजा है। ये सारे जो है ना राजा जो होते हैं वो राज ऋषि थे, पहले सारे राजा जो होते थे राज ऋषि थे, और राजाओं के जो भी कार्य होते थे वो उनके जो मंत्री होते थे उनके पास ब्राह्मण होते थे वो उनको आदेश करते थे शास्त्रों का और उनके अनुसार वो कार्य करते थे। वो मनमानी नहीं करते थे और मूर्ख श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने के लिए यत्न करता है। जो बेवकूफ होते हैं जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है वो भगवान के अस्तित्व की उपेक्षा करने में के यत्न करते हैं कि भगवान नहीं है, ये सब शास्त्र में सत्य नहीं लिखा हुआ है, हम इसको नहीं मानते, तो वो श्रद्धा नहीं उनके अंदर और ना और वो साथ में मूर्ख है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते भगवद गीता में अज्ञस्य अश्रद्ध दानस्य संशय आत्मा विनश्यति। जिनको शास्त्र के अंदर श्रद्धा नहीं है उनका विनाश हो जाएगा। 9.3 में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया अश्रद्ध दान पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। हे परंतप, जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता, इस धर्म में भगवत भक्ति के धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है तो वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते जो श्रद्धाहीन है, जो भगवान के अस्तित्व की उपेक्षा करते हैं और जो बड़ी मुश्किल से उन्हें ये मानव जन्म मिला है, बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते हैं, ये दावा करते हैं कि मुझे धर्म में कोई रुचि नहीं है, धर्म को नहीं मानता हूं, तो फिर क्या होता है? मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को समझने के लिए मिलता है। ये मनुष्य जीवन खाली आहार निद्रा भय मैथुन करके जानवरों की तरह रहने के लिए नहीं मिला है। ये क्यों मिला है? विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिला है, हमें भगवान के विषय में जानने के लिए मिला है, भगवान के आदेशों को जानने के लिए मिला है। लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ढंग से ना जानकर धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो भगवान को नहीं जानते हैं इसलिए वो भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान का कोई आदेश ही नहीं। यद्यपि वे जन्म जरा मृत्यु रोग के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भले कोई कितना ही भगवान की सत्ता को नकारे, भले ही शास्त्रों के आदेशों का इनकार करे, लेकिन वो फिर भी भगवान के नियमों से जकड़े हुए हैं। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, कोई भी रोग नहीं चाहता है, कोई भी मृत्यु नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भगवान का विधान है तो वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब उनको ये देखना चाहिए जो ये सोचते हैं कि भगवान का कोई नियम नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए अगर कोई नियमित करने वाला नहीं है, कोई अगर हमारे ऊपर निर्देशन करने वाला नहीं है, हम किसी के अंडर में, तो फिर काम अगर हम किसी के अंडर में कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये सब नियम हमें क्यों बाध्य करते हैं। तो भले ही वो भगवान की सत्ता को नकारते हैं, भले ही वो शास्त्र के आदेशों को नकारते हैं, लेकिन वास्तव में जीव का कल्याण तभी होगा जब वो शास्त्रों की विधि विधानों का पालन करेगा। आज समस्त जीवों को इसीलिए कष्ट मिल रहा है, इसीलिए दुख मिल रहा है ताकि वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। एक राजा जिसका कर्तव्य है अपनी समस्त प्रजा का संरक्षण करना, अगर वो नहीं करता है, आज का कोई भी राजा ये नहीं देखता है कि मेरी प्रजा सुखी रहे, वो क्या सोचता है, खाली मुझे कैसे सुखी रहना चाहिए। तो इसी के कारण आज राजाओं की ना कोई कीर्ति है, ना ही उनको कोई आयु प्राप्त होती है, ना उनको कोई गति प्राप्त होती है, वो इसी तरह से दूसरे जन्मों में पशुओं की तरह जीते हैं। तो वास्तव में अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है, इसी से संसार का कल्याण है कि हमें शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, भागवतम को पढ़ना चाहिए और इनका अध्ययन करके हमें उन्हें बताए गए आदेशों को फॉलो करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए, अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसी से हम इस संसार में सुखी रह सकेंगे और आध्यात्मिक जीवन में हम प्रवेश प्राप्त पा सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैसा साथ रहेगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।